नमस्कार भारत, तारीख 27 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। पाकिस्तान के नए सियासी कप्तान बनने की दहलीज पर खड़े इमरान खान का ऐलान, विरोधियों पर नहीं होगा जुल्म, जश्न में डूबे समर्थक।
सब चीज के बावजूद हम ये इलेक्शन लड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम कामयाब हुए मैंडेट में।
इमरान ने पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर करने का किया दावा, लेकिन क्या भारत से सुधरेंगे संबंध?
थोड़ी सी कंसर्न ये है कि क्या इमरान खान का मतलब है कि भारत के साथ एक टफ नजरिया उनका होगा।
और खास रिपोर्ट में यूपी के उस दलित युवक की आप बीती जिसे डॉक्टर आम्बेडकर को अपशब्द कहने के लिए किया गया मजबूर।
मेरे गिरबान को पकड़ा और एकदम से बोला कि बोल, नहीं तो तेरे में गोली मार देंगे।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे पूर्व महान क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान ने कहा है कि वो देश को अपने नेतृत्व में एकजुट करना चाहते हैं। चुनावों को निष्पक्ष बताते हुए उन्होंने कहा कि वो विपक्षी दलों के चुनावों में धांधली के आरोपों की जांच कराने के लिए तैयार हैं। विपक्षी दलों ने इमरान खान पर सेना के साथ मिलकर चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। अभी तक आए नतीजों में इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार खत्म करने के वादों के साथ सत्ता में आ रहे इमरान खान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ ऐसे रिश्ते रखेंगे जिससे दोनों देशों का फायदा हो। नतीजे आने में देरी हो रही है और माना जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर तक पूरे नतीजे आ जाएंगे। तुर्की ने कहा है कि वो हिरासत में लिए गए अमरीकी पादरी के मामले में अमरीका की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पादरी एंड्रयू ब्रंसन को चरमपंथ के आरोप में हिरासत में लिया गया है और उन पर चल रहे मुकदमे ने नेटो सहयोगी देशों अमेरिका और तुर्की के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से पादरी को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो अमरीका तुर्की पर व्यापक प्रतिबंध लगाएगा। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावसोग्लू ने कहा है कि उनका देश किसी के आदेश को नहीं मानेगा और कानून व्यवस्था के मामले में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। पादरी एंड्रयू ब्रंसन पर कुर्द विद्रोहियों की मदद करने के आरोप हैं। वहीं वाशिंगटन में दिए गए एक भाषण में अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने तुर्की के नेताओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, राष्ट्रपति अर्दोगान और तुर्की की सरकार के लिए मेरे पास अमरीका के राष्ट्रपति की ओर से एक संदेश है, या तो पादरी एंड्रयू ब्रंसन को रिहा करो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच सभी के हितों वाले व्यापार समझौते के लिए अमेरिका से बातचीत के समर्थन में नहीं हैं। मैड्रिड में बोलते हुए मैक्रों ने कहा कि मौजूदा हालात ऐसे समझौते की अनुमति नहीं देते हैं। राष्ट्रपति के बयान से पहले फ्रांस ने यूरोपीय संघ से अमेरिका के साथ व्यापारिक गतिरोधों को कम करने के लिए किए गए समझौते की जानकारियां मांगी थीं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ के आयुक्त जॉन क्लोज यूंकर ने कहा था कि वो औद्योगिक उत्पादों पर जीरो टैक्स तक पहुंचने के लिए समझौता करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, अमेरिका के सार्वजनिक बाजार जो आज पूरी तरह से बंद है तक पहुंचने के लिए हमें अमेरिका की ओर से स्पष्ट संकेत देखने की जरूरत है। ये संकेत हैं स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए अवैध टैक्स कम करना। मेरी राय ये है कि हमें आगे बढ़ने से पहले इन मुद्दों पर हस्तक्षेप करना चाहिए। इसराइल के नियंत्रण वाले पश्चिमी तट पर हुए चाकू हमले में घायल एक इसराइली नागरिक की मौत हो गई है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में 3 लोग घायल हुए थे। हमलावर पास के कुबार गांव का रहने वाला एक 17 वर्षीय फलस्तीनी युवा था जिसे पास से गुजर रहे एक हथियारबंद व्यक्ति ने मार गिराया। इजरायली सेना का कहना है कि कुबार गांव में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गजा में शासन चला रहे इस्लामी समूह हमास का कहना है कि यह हमला बुधवार को गजा में इजरायली हमले में 3 लड़ाकों की मौत का बदला है। पोलैंड में हजारों लोगों ने सरकार के न्याय व्यवस्था में बदलाव करने के लिए उठाए गए ताजा कदमों का विरोध किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजों की सूरत लगभग साफ हो गई है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी बहुमत से दूर है, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि सियासी विरोधी नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इमरान खान के समर्थक तमाम आरोपों से बेपरवाह हैं और जश्न मना रहे हैं।
हमें मुकम्मल इत्मीनान है कि इलेक्शन की कंडक्ट फेयर एंड फ्री हुई है।
हम हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है, इसको हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जिधर प्राइम मिनिस्टर रहेगा।
ये आवाजें जो हमने आपको सुनाई चुनाव आयोग के अधिकारी थे, जो कह रहे थे कि चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को नकार दिया है उन्होंने सीधे तौर पर। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि वो विरोधियों के दावों की जांच कराने के इच्छुक हैं। बुधवार यानी 25 जुलाई को पाकिस्तान में मतदान हुआ था। पहला नतीजा कल तड़के आया और शाम तक साफ हो गया कि इमरान खान की पार्टी सबसे आगे रहेगी। करीब 22 साल तक 22 गज की क्रिकेट पिच पर धमाल करते रहे इमरान खान को इस सियासी कामयाबी के लिए पूरे 22 साल तक ही इंतजार करना पड़ा है। साल 1971 में टेस्ट करियर का आगाज करने वाले इमरान खान साल 1982 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे और साल 1992 में बतौर कप्तान पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। साल 1996 में अपनी पार्टी का गठन कर उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत की और आज वो पीएम की कुर्सी के बेहद करीब हैं। चुनाव नतीजों को लेकर ताजा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। स्वागत है शुमाइला आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे चुनाव नतीजों के बारे में, अंतिम नतीजे कब तक आएंगे?
देखिए, अंतिम नतीजे काफी हद तक आ चुके हैं और शायद आज दिन के पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो आ जाएंगे। लेकिन अब ये बात बिल्कुल तय है कि इमरान खान सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास लीड है। वो कोई एब्सोल्यूट, वो सिंपल मेजॉरिटी तो शायद अभी नहीं ले सके हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद जो उनके सबसे मेन राइवल्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा कुछ सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ली हैं और एक और जो मजहबी, जो रिलीजियस पार्टीज थी उनका एक अलायंस बना था, कुछ सीटें बहुत कम तवक्को से उन्होंने भी ली हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ पहले से ही उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, एक दो छोटी पार्टियों से भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो अब बहरहाल ये इसको निगोशिएट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए।
जी, 270 में से PTI ने लगभग 112 के करीब सीट जीत ली हैं जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं।
जी,
विरोधियों का इस बीच में आरोप भी आ रहा है कि ये रिगिंग हुई है, चुनाव के दौरान धांधली हुई है। चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन आम लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो वोटर हैं, आम वोटर, उनके किस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं?
देखिए, असल में ये जब डिले हुआ है पहली रात इलेक्शन के बाद, उसमें कुछ क्विकली रिएक्ट कर दिया, खासतौर पे PMLN ने ज्यादा रिएक्ट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और एकदम से कह दिया कि ये सब धांधली हो गई है। लेकिन उसके बाद जब सीट्स के जब रिजल्ट आने शुरू हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो एक अपेरेंटली एक तासुर ये बनता है कि शायद उनको भी एहसास हुआ है कि वो टेक्निकल जो ग्लिच ज्यादा था और रिगिंग जो है वो थोड़ी कम थी। उन्होंने बिल्कुल बैक ऑफ से नहीं किया, लेकिन जिस तरह परसों रात में शहबाज शरीफ ने कहा था हम सुबह ये कर देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, CEC की मीटिंग होगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। तो अवाम में कोई इस तरह की फिलहाल रिगिंग से मुतालिक कोई स्ट्रांग फीलिंग नहीं है। जब से पता चला है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो लोगों का ज्यादा ध्यान जो है वो इमरान खान और उनकी जो एजेंडा है और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ है, ना कि रिगिंग की तरफ।
जी, 22 साल इंतजार किया इमरान खान ने, लगातार वो चैलेंज करते रहे प्रधानमंत्री बनने के लिए विरोधी पार्टियों को। पाकिस्तान का मीडिया इस कामयाबी को इमरान खान की किस तरह से पेश कर रहा है?
इमरान खान के बहुत ही बिटर स्वीट रिलेशनशिप रहा है मीडिया से, खासतौर पे पाकिस्तान के कुछ बड़े मीडिया ग्रुप्स से. लेकिन कुछ चैनल्स जो हैं बहुत डिवाइडेड पोलराइज मीडिया था, कुछ चैनल्स प्रो इमरान थे, कुछ एंटी इमरान थे. लेकिन अब जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो कल से हम जितनी ट्रांसमिशन दे रहे हैं, यूजुअली जो ज्यादा क्रिटिकल चैनल्स भी थे तो वो अभी दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर हैप्पी एंड ओपन. तो वो अब उनको प्राइम मिनिस्टर के एक रोल में ढलते हुए देख रहे हैं, उससे मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं. तो मीडिया अभी खास काफी हद तक जो है वो एक पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़ा है और एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भी चॉइस पाकिस्तान के लोगों ने मेक की है,
यानी जो बदलाव हो रहा है उसका स्वागत किया जा रहा है. बहुत शुक्रिया शुमाइला जाफरी इस पूरी जानकारी के लिए. इमरान खान जब इलेक्शन नतीजे आने के बाद रूबरू हुए प्रेस से तो उन्होंने सादगी पर जोर दिया. उन्होंने अपनी संभावित विदेश नीति का भी खाका पेश किया. लेकिन इन चुनाव नतीजों का पाकिस्तान के लिए क्या संदेश उभरा है, हमारे साथी आदर्श राठौर ने यह सवाल किया बीबीसी उर्दू के पूर्व संपादक मोहम्मद हनीफ से.
आई थिंक सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो तो ये है कि इमरान खान जो कोई 22 साल से पाकिस्तान की सियासत में थे और वजीर आजम बनना चाहते थे और बहुत अरसे तक लोग उनका मजाक उड़ाते थे, सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि वो अब लगता है बल्कि तय है तकरीबन कि वो जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. दूसरा उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पावर थी शरीफ ब्रदर्स की और यहाँ कराची में एमकेएम की थी, तो वो बड़े अरसे के बाद कुछ 30 साल के टाइम के बाद जो है वो बिल्कुल एक तरीके से टूट गई है. तो लगता यूं है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक बिल्कुल नए ईरा का जो है वो आगाज हो रहा है.
इमरान के सामने तीन बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, बड़ी चुनौतियां क्या होंगी?
देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है जो खुद उन्होंने पिछली हुकूमत के साथ किया था. पिछला इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, पहले दिन से इमरान खान ने कहना शुरू कर दिया कि ये चुनाव जो है सही नहीं था, उनके साथ ज्यादती हुई है और उन्होंने उस पर बड़े प्रोटेस्ट किए, धरने दिए. तो अभी भी जो है ज्यादातर पार्टियां जो हैं जो इलेक्शन हारी हैं वो ये कह रही हैं कि ये चुनाव जो है इसमें जो है बड़ी गड़बड़ हुई है. तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी लेजिटिमेसी जो है उनके जीतने की उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरह से ये मनवाते हैं कि मैं असल में जीत के आया हूँ और किसी गड़बड़ के नतीजे में वजीर आजम नहीं बना. दूसरा बड़ा चैलेंज जो है उनके सामने इमीडिएट ही होगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए. और तीसरा बड़ा चैलेंज आई थिंक उनके सामने ये होगा कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं और खास तौर पे जवान लोगों से. इस दफा जो जीते हैं उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो जवान लोगों का है, उन लोगों का है जिन्होंने पहले कभी वोट नहीं दिया था, उन्होंने जिंदगी में पहली दफा वोट दिया है. तो दूसरा ये है कि ये उनके जो वादे हैं उन पर वो किस तरह से अमल कर सकते हैं.
एक दौर था जब पीपीपी की जो प्रेजेंस थी वो पैन पाकिस्तान थी, लेकिन अब बिलावल के लिए अपनी उस पार्टी को रिवाइव करना कितना आसान होगा?
बिलावल भुट्टो की पहली इलेक्शन कैंपेन थी और उन्होंने काफी लोगों को सरप्राइज किया है और उनकी पार्टी ने भी जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अच्छा परफॉर्म किया है. बस उन पे एक इल्जाम सिर्फ ये आता है कि उनके अब्बा के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं और लगता है कहते हैं कि जो पार्टी है अभी तक वो उस पर पूरा उनका होल्ड नहीं है. तो सीधी सी बात तो लोग यही कहते हैं कि जब वो ये इमेज खत्म कर लेंगे कि वो अब अपने अब्बा के बेटे नहीं रहे बल्कि एक इंडिपेंडेंट भुट्टो हैं, तो वो पार्टी को यकीनन रिवाइव करने का चांस रखते हैं.
जी, अब एक बड़ा सवाल कि हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को लेकर इमरान खान का किस तरह का रवैया रह सकता है, किस तरह का रुख रहने वाला है?
मेरा ख्याल है कि इमरान खान भी अपने सेटल होने के बाद उनको रियलाइजेशन होगी जैसे पाकिस्तान में हर सिविलियन लीडर को होती है कि अपने जो हमसाए हैं उनसे बना के रखनी चाहिए, उसके बगैर सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती. आमतौर पर पाकिस्तान में वजीर आजम की शामत उसी वक्त आती है जब वो ये सोचना शुरू करता है कि अब वो फॉरेन पॉलिसी में अमल दखल दे सकता है, वो इंडिया के बारे में खुल के बात कर सकता है, अफगानिस्तान के बारे में खुल के बात कर सकता है. जैसे ही कोई वजीर आजम पाकिस्तान में इस तरह के बात करना शुरू करता है तो उसके ऊपर बुरा वक्त आ जाता है. कि मुझे यकीन है कि इमरान खान जो है वो इंडिया की तरफ कोई जेस्चर देगा अच्छे. अब फिर देखना ये होगा कि उसके बाद क्या वो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं या उनके साथ भी वही होगा जो पहले वजीर आजमों के साथ होता रहा.
ये थे मोहम्मद हनीफ, जिनकी राय है कि इमरान भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश जरूर करेंगे. लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर इमरान खान के तेवर बहुत तल्ख थे. ऐसे में उनकी जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं, हमारे साथी आदर्श राठौर ने ये सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर से।
देखिए, एक तो चीज़ें हैं जो इमरान खान के बारे में भारत में थोड़ी सी आशंका पैदा करती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान ने जो जिस तरह से नवाज शरीफ को टारगेट किया था, जब नवाज शरीफ इंडिया के साथ एक हाथ बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की थी, या पठानकोट वाकया के बाद नवाज शरीफ ने वादा किया था कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ जिस तरह का एक्शन लेंगे, इमरान खान ने इसको इस तरह का नैरेटिव बना दिया था कि नवाज शरीफ इंडिया के ज़्यादा पक्ष में हैं। और वोट देने के बाद भी जो बयान इमरान खान ने दिया था वो स्पष्ट तौर से ये था कि नवाज शरीफ इंडिया के पसंदीदा हैं, मैं पाकिस्तान के पक्ष में बात करूंगा। तो थोड़ी सी कंसर्न ये है कि क्या इमरान खान का मतलब है कि भारत के साथ एक टफ नज़रिया उनका होगा। दूसरी बात ये ज़रूर है कि जिस तरह से एलिगेशंस हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इमरान खान के पक्ष में है। भारत की ज़्यादातर जो तकलीफ़ें पाकिस्तान की तरफ से हैं वो टेररिज्म के मुद्दे से हैं, और भारत को ऑलवेज लगा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जिस तरह का सपोर्ट देती हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, इसकी वजह से भारत को टारगेट किया जाता है। तो ज़रूर चाहेंगी कि जो भी पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बन के आए वो इस मुद्दे पे भारत के साथ थोड़ा सा काम करना चाहे। तो अगर इमरान खान मिलिट्री के साथ बहुत ही करीब में हैं तो शायद ये उम्मीद पूरी नहीं होगी। तीसरी बात ये है कि इमरान खान का जो रुख वर्ल्ड के साथ भी हुआ है, उनको तालिबान खान बुलाया जाता था, एंटी अमेरिकन बुलाया जाता था, इन सब की वजह से ऐसे लगेगा कि जिस तरह का रुख पाकिस्तान अपने रीजन में लेगा वो भी भारत के पक्ष में नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन सब से काफ़ी ज़्यादा इमरान खान को लोग यहाँ पे जानते हैं उनके क्रिकेटिंग करियर की वजह से, और इसकी भी वजह से क्योंकि वो खुद यहाँ पर इंडिया में काफ़ी समय के लिए रह चुके हैं एक कॉमेंटेटर के लिहाज से, और काफ़ी बार इंडिया आ चुके हैं, लोगों से बात की है उन्होंने। पिछली बार जब 2015 में आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उन्होंने बातचीत की थी, और काफ़ी ऐसे चीज़ें कहीं थी जो पॉजिटिव रुख से देखी जानी चाहिए। एक तो उन्होंने पीपल टू पीपल टाइज की बात की है, दूसरे उन्होंने ट्रेड को बढ़ोतरी देने की बात की है, और तीसरा उन्होंने कहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए कश्मीर के मुद्दे पे, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मुद्दे हैं उनको एक डायलॉग के तहत रिजॉल्व किया जाना चाहिए, और ये चीज़ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है। हालांकि सबने सोचा था कि इमरान खान का रुख थोड़ा सा एंटी इंडिया है, उनके अपने मैनिफेस्टो में पीटीआई ने ऐसे कुछ नहीं कहा है।
तो इन हालात में हम कितनी उम्मीद रखें दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की?
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मौके की जरूरत होती है। उम्मीद तभी रह सकती है जब दोनों तरफ के लीडर्स चाहते हैं कि किसी मौके का वो फायदा उठाना चाहें। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि जब भी भारत में या जब भी पाकिस्तान में एक नया लीडर आया है, एक नया प्रधानमंत्री आया है, तो उसने जरूर कोशिश की है।
ये थी सुहासिनी हैदर। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भी एक युवा मुल्क है। इमरान खान की पार्टी को मिली कामयाबी में युवाओं से मिले समर्थन की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के कुछ युवा वोटरों की आवाज।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आया है, ये एक नया ट्रेंड आया है। प्लस इमरान खान की जो पार्टी आने के बाद करप्शन में काफी हद तक जो है ना काबू पाया जा सकेगा, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी हद तक ठीक होगी, और करप्शन से काफी हद तक हम कह दें कि दूर चले जाएंगे।
NA 53 मेरा हल्का था जहाँ पे मैंने कल वोट कास्ट किया, आज के रिजल्ट आ चुके हैं और PTI को यहाँ से विन कर सकी है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि PTI ने लीडिंग पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, और द बेस्ट थिंग इज दैट इमरान खान ने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, हाउस, DC, असिस्टेंट कमिश्नर के जितने भी ये बड़े बड़े महलात हैं उसको खत्म करके उसके अंदर लाइब्रेरीज वगैरह या एजुकेशन का सिस्टम वहाँ पर बनाएंगे।
अगर आप वोट को इज्जतों का नारा लगा रहे हैं तो ओके फाइन, आप इसको इज्जत दें, लेकिन आप वोट की इज्जत तो करवा सकते हैं लेकिन डाके की इज्जत हमसे मत मांगिए। और उसके बाद ये है कि मुझे नहीं समझ आई ये कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में थी कि मुझे बहुत छोटे होते कि अपने कुछ इलेक्शन याद है, तब भी शायद इससे कम ही सुस्त रफ्तारी देखने में आई।
क्रिकेट मैदान पर इमरान खान बड़े कप्तान थे, सियासी पिच पर उनका किरदार कैसा होगा ये देखना होगा। आपने सुनी पाकिस्तान के युवा वोटरों की आवाज। अगली खबर भारत से। बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग एक दलित युवक को डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करते दिख रहे थे। ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई थी। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने मेरठ का दौरा किया और पीड़ित से बात की। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
वो बुध का ही दिन था, शाम का वक्त। लवली दफ्तर से वापस आया ही था कि किसी का फोन आ गया और वो घर से निकल लिया। रात सुबह में तब्दील हो गई और फिर दोपहर में। माँ बाप की बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन वो नहीं आया। आया तो वो वीडियो जिसमें कुछ लोग लवली को मार मार कर भीमराव अंबेडकर को भद्दी गालियां देने पर मजबूर कर रहे थे।
मेरे को कॉल आया था, कॉल आने के बाद मुझे लेके चले गए। मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक खिलाया और चाउमीन खिलाया। मैं खाते खाते जैसे जस्ट पीछे गिर गया, मेरे गिरबान को पकड़ा और एकदम से बोला कि बोल सरदार जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद। मैंने ना बोलने की कोशिश की। दूसरे लड़के ने तमंचे के बट मेरे सर पे मार के ने कहा ठीक जल्दी बोलता है नहीं तो नहर में फेंक देंगे तुझे, नहीं तो तेरे में गोली मार देंगे। फिर उन्होंने कहा फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुर्दाबाद बोलो। फिर मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुर्दाबाद के लिए बोला। जस्ट ऐसे ही फ्लैश बंद हुई, फिर एक और मेरे चांटे मारे, फिर मुझे पीछे धक्का दे दिया, मैं ऐसे ही गिर गया।
18 जुलाई की उस घटना के निशान आज भी दलित युवक लवली के चेहरे पर उभरते डूबते नजर आते हैं। माँ ओंकारी देवी और बुजुर्ग पिता सुरेंद्र कुमार के लिए ये समय कयामत की घड़ी सी थी।
19 तारीख में 2:30 बजे हमारे पास वीडियो वायरल दिखाने वाले, जिन जिन के पास भी आती रही वो आते रहे लवली कहाँ है। हम थाने में गए 19 तारीख में, हमने वहाँ पे वीडियो दिखाई और हमने कहा कि हमारा बच्चा कल से लापता है, तो उन्होंने हमारी तहरीर लिख ली। उसके बाद उन्होंने वीडियो वायरल भी अपने मोबाइल में ऐड कर ली।
जब उसी सुरेंद्र कुमार के एक बेटे की अम्बेडकर को भद्दी गालियां देने को मजबूर किए जाने वाली वीडियो सर्कुलेट होने लगे तो उनके दुख का महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। नशा खिलाए जाने और होश में आने के बीच लवली की जिंदगी के तकरीबन 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका था।
होश आने के बाद मैं ट्रेन की पटरी पे पड़ा हुआ था, वो भी साइड में जैसे जंगल होते हैं। मेरे बुरी हालत में था मैं, जैसे खड़ा हुआ मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये कहाँ है। ये मेरठ सिटी स्टेशन के ट्रेन की पटरी, आप पुलिस वालों के पास गया मैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मुझे एक चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाया। उन्होंने मेरे फैमिली का नंबर मांगा, फैमिली का नंबर दिया।
मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके लवली वाहन फाइनेंस करने वाली एक स्थानीय कंपनी में काम करते थे और घर में कमाने वाले अकेले सदस्य थे। इस मामले में स्थानीय थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दलित समुदाय में इस वाक्य को लेकर भारी रोष है।
बाबा साहब के प्रति इन लोगों ने ऐसी दुर्घट घटनाएं करी हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए, ऐसी घटना से हम बहुत पीड़ित हैं।
लवली के बड़े भाई अनुज कुमार अपनी लड़ाई आगे तक ले जाने की बात कहते हैं। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी, किला परीक्षितगढ़, मेरठ।
और वक्त ये जानने का है कि दिल्ली से छपे अखबारों की आज की सुर्खियां क्या हैं। मौजूद हैं दिलनवाज पाशा
जी। वासले, आज अखबारों में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान और अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे इमरान खान की जीत से जुड़ी खबरें लगभग सभी अखबारों में पहले पन्ने पर हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी है, लेकिन एक खबर जिसका हम खास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे, 3 बच्चियों की भूख से मौत। कल हमने बताया था बच्चियां भूख से मर गई, लेकिन आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि मरी कैसे। संसद में ये मामला गूंजा है और जनसत्ता बता रहा है कि मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्ते में केंद्र और दिल्ली सरकार से इस पर जवाब मांगा है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि ये हमारे तंत्र की बड़ी नाकामी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक विशेष रिपोर्ट में कहा है कि इस बच्चियों की भूख से मौत के मामले में उनका स्कूल, स्थानीय लोग और जो योजनाएं हैं सभी नाकाम हुई। और अब पता चला है कि उनमें से एक बच्ची के खाते में 1800 रुपये थे, लेकिन परिवार उनको निकाल नहीं पा रहा था।
सियासत बड़ी जबरदस्त हो रही है इस मामले पर।
जी बिल्कुल। और द हिंदू की रिपोर्ट बता रही है कि पड़ोसियों का कहना है कि अगर वो यहाँ पर रहते, मौत से 2 दिन पहले ही उन्होंने घर बदला था, तो शायद बच्चों की मौत ना होती, क्योंकि पड़ोसी उनको खाना दे रहे थे। ये द हिंदू की एक रिपोर्ट बता रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साक्षात्कार छापा है, जिसमें आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने बूचड़ खाने बंद करके प्रदेश में लिंचिंग जो है, भीड़ के हाथों लोगों की हत्याएं रोक दी। अगर हम बूचड़ खाने बंद ना करते तो सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं शायद उत्तर प्रदेश में होती। इसके अलावा जिक्र करेंगे जनसत्ता में प्रकाशित एक कार्टून का, जिसमें सेना की वर्दी पहने एक खिलाड़ी जो है पिच पर खड़ा है और इमरान खान उसके रनर हैं। लिखा है, मालूम तो है ना यहाँ बल्लेबाज तो मैं ही रहता हूँ, बस रनर बदलता रहता है। और चलते चलते बता दें, बिहार सरकार ने जो बालिका गृह है उसमें कथित रेप के मामलों की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
और उन तस्वीरों की बात भी चलते चलते जिनमें दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश का
जी बिल्कुल वाचल में भूल ही गया, 35 फुट गहरा एक गड्ढा हो गया है और लगभग सभी अखबारों में यह छपा है। कल बहुत भारी बारिश दिल्ली
आज में थी। भी दिल्ली भीगी भीगी है। शुक्रिया दिलनवाज। और अब एक खास रिपोर्ट। हाल में दिल्ली में एक एयर होस्टेस के कथित तौर पर आत्महत्या का मामला सामने आया था। परिजन का आरोप था कि उनके पति उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। इस मामले को लेकर यह सवाल भी उठा कि आखिर पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिलाएं शादी के बाद हिंसा को बर्दाश्त क्यों करती हैं। हमारे साथी नवीन नेगी ने ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है।
घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है जिसकी शिकार आज भी कई महिलाएं होती हैं। न सिर्फ गांव देहात में रहने वाली अनपढ़ महिलाएं बल्कि शहरों में रहने वाली पढ़ी लिखी और आर्थिक तौर पर आज़ाद महिलाएं भी अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं। ऐसा ही एक वाकया पिछले दिनों दिल्ली में हुआ जिसमें एक 39 साल की एयर होस्टेस ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। एयर होस्टेस के परिवार ने उनके पति पर उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पढ़ी लिखी और पेशेवर रूप से सफल समझी जाने वाली एयर होस्टेस का यूं अपनी ज़िंदगी समाप्त करने का फैसला सवालों के घेरे में है। इस घटना के सामने आने के बाद सवाल उठने लगा है कि आर्थिक रूप से आज़ाद महिलाएँ आखिर ये ज़्यादतियाँ चुपचाप क्यों सहती रहती हैं। राजस्थान में रहने वाली एक महिला ने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर अपने साथ हुई घटना हमारे साथ साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी शादी के कुछ दिन बाद ही उनके साथ मारपीट शुरू हो गई थी। वो कहती हैं,
शादी के वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी लेकिन पापा चाहते थे कि शादी कर लूँ। उन्होंने ही मेरे लिए ये रिश्ता ढूंढा था।
इतना बोलते बोलते उस महिला का गला भर आता है। उनके शब्द टूटने लगते हैं और उनकी सांसों की आवाज़ के जरिए उनका दबा हुआ दर्द महसूस होने लगता है। एक बार फिर अपनी आवाज़ को समेटते हुए वो कहती हैं,
हमारी शादी का तीसरा दिन था। हम घूमने के लिए मनाली गए थे। रात में वो मेरे सामने शराब पीकर आया और कुछ देर बाद मुझे मारने पीटने लगा।
यह महिला बताती है कि इस रिश्ते के खराब होने के बाद उनके मायके वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया। वो पूरी तरह अकेली हो गई और बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला। आपसी रिश्तों में अनबन के बढ़ते मामलों के बाद शहरों में मैरिज काउंसलर का सहारा भी लिया जाने लगा है। दिल्ली में मैरिज काउंसलर के तौर पर काम करने वाली मनोचिकित्सक डॉक्टर निशा खन्ना इस बात पर सहमत होती हैं कि महिलाएं अक्सर शादी को बचाने की कोशिशें ज़्यादा करती हैं। इसके पीछे डॉक्टर निशा प्रमुख वजह बताती हैं। वे कहती हैं,
फर्स्ट रीज़न आई वुड से आउट ऑफ लव पीपल टेक दैट। सेकंड रीज़न एज पर मींस सोशियो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली व्हेन द पर्सन इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। जब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं तो इस वजह से वो ये सब चीज़ें सोचते हैं।
शादी को समाप्त ना करना, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि तलाक को भारतीय समाज में बहुत ही बुरे फैसले के तौर पर देखा जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में तलाक की प्रक्रिया के बारे में वकील अनुजा कपूर बताती हैं कि पहले तो सहमति से तलाक लेने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर भी अगर तलाक का मामला चलता है तो उसमें 4 या 5 साल आराम से लग जाते हैं। तलाक के साथ साथ घरेलू हिंसा, संपत्ति से जुड़ा मामला, अगर बच्चे हैं तो उनके अधिकारों का मामला, ये सब भी चलते रहते हैं। वहीं मैरिज काउंसलर डॉक्टर निशा सलाह देती हैं कि तलाक की नौबत सबसे अंत में आनी चाहिए।
एज ए काउंसलर हम किसी को मार्ग गाइड नहीं करते। अगर बहुत एक्सट्रीमली वायलेंस हो रहा होता है हम उसे पुलिस की हेल्प लेने को बोलते हैं और उसकी पहले स्ट्रांग विल पावर पर काम करते हैं, उसे इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं ताकि अगर वो कोई लीगल फाइट भी लड़ सके उसके लिए मजबूत।
शादी में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं आर्थिक रूप से भले ही आज़ाद हो जाएं, लेकिन समाज की बेड़ियां उन्हें आज़ाद होने से रोकने का काम करती हैं। राजस्थान की जिस महिला ने हमारे साथ अपना अनुभव साझा किया, उनका कहना है कि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें अकेलापन ज़रूर महसूस होता है, लेकिन वे खुश हैं कि एक बुरे रिश्ते और बुरे दौर से बाहर निकलने में कामयाब रहीं। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
और चलते चलते मुख्य समाचार दिलनवाज पाशा से।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे पूर्व महान क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान ने कहा है कि वो देश को अपने नेतृत्व में एकजुट करना चाहते हैं। तुर्की ने कहा है कि वो हिरासत में लिए गए अमरीकी पादरी के मामले में अमरीका की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच सभी के हितों वाले व्यापार समझौते के लिए अमरीका से बातचीत के समर्थन में नहीं हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया, फेसबुक प्रसारण में मदद की गुरप्रीत कौर ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है BBC हिंदी.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।